ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये ओम शांति का महामंत्र जो हमारी आदरणीय प्यारी दादी जानकी जी ने हम सबको सिखाया है, क्योंकि इस मंत्र के अंदर बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। यज्ञ की स्थापना में तो पहले ओम की ही ध्वनि लगती थी, मम्मा भी ओम की ध्वनि ही उच्चारण करती थी अपने सितार के माध्यम से। मम्मा जब सितार के माध्यम से ओम की ध्वनि उच्चारण करती थी तो हम लोग बहुत छोटे थे, परंतु उस छोटेपन में भी मम्मा की ओम ध्वनि सुनकर हम लोग खो जाते थे, पता नहीं हम कहाँ बैठे हैं। मम्मा एक स्टेज में बैठ के सितार बजाती, हम लोग पट में बैठते थे, छोटे थे, और इतना कुर्सी का तो उस समय सोफा कुर्सी का तो कोई इंतजाम होता नहीं था, तो ओम की ध्वनि के अंदर मस्त हो जाते थे। अब बाबा ने भी गीत बनाया था ओम के ऊपर, शायद आप सब ने सुना होगा कि ओम बोल रे मना, कुंडी खोल रे मना, भाई तेरे घर में बड़ा खजाना, उसको तूने नहीं पहचाना, कुंडी खोल रे मना, ओम बोल रे मना। तो बाबा भी शुरू शुरू में ओम की ध्वनि ही लगवाते थे। इस ओम के अंदर बहुत कुछ राज समाया हुआ है, क्योंकि ओम माना ही मैं। योगी जीवन के अंदर पहला लेसन ही हम सबको मिलता है, मैं कौन। जब अपने आप को हम पहचानते हैं कि मैं कौन हूं, तो योगी जीवन बनाना सहज हो जाता है। मैं कहने वाला, बाबा ने पहले लेसन में तो आत्मा का पाठ पढ़ाया, जो अभी हम सुनते हैं कि आत्मा बिंदु है, लेकिन जब हम लोग ज्ञान में आए थे तब हम लोग यही सीखा था कि आत्मा और शिव बाबा दोनों ही अंगुष्ठाकार है। हम लोग को सिखाया जाता था कि अंगुष्ठाकार है आत्मा, लेकिन जैसे गीता में लिखा हुआ है कि गुह्यते गुह्य ज्ञान में सुनाऊंगा, तो धीरे धीरे ज्ञान की प्रकाष्ठा बढ़ती चली गई है और बाबा गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाते सुनाते अभी हम सबको क्या सिखाया कि आत्मा तू बिंदु है और मैं भी बिंदु हूं। अब उस बिंदु स्वरूप में स्थित होना स्वयं को योगी जीवन बनाना है। बिंदु को याद करना, बिंदु बनना, ये दो बातें हैं। इन दो बातों के अंदर स्थित होना सहज भी है और मेहनत भी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, मेहनत जरूर है। तो योगी जीवन एक ऐसा जीवन है जो सर्वश्रेष्ठ जीवन है। दुनिया में भी बहुत सारे योगी हैं, बहुत योग तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सांस चढ़ाते हैं, अपने शरीर के अंदर आग लगा लेते हैं, पानी में कूद जाते हैं, अनेक प्रकार के योग दुनिया में कर रहे हैं। पर हमारा जो योगी जीवन है उन सब से बिल्कुल भिन्न जीवन है, बिल्कुल भिन्न है। हम कोई किसी प्रकार का हठ नहीं करते, कोई प्रकार का आसन नहीं लगाते, लेकिन इतना भी सहज है कि आंख भी बंद नहीं करना होता है हमें, तो इतना सहज है हमारे लिए, आंख भी बंद नहीं करना है, तो सोचो कितना सहज है। तो सिर्फ योगी ही नहीं बनाया बाबा ने, हम सबको बाबा ने क्या कहा, आप राजयोगी हो, राजयोगी हो। योगी कौन? जिसका अपने सर्व कर्म इंद्रियों पर राज्य है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है, वो राजयोगी है। जब तक हमारा अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य नहीं है, तब तक हम राजयोगी व योगी नहीं कहला सकते हैं। तो आवश्यकता तो इस चीज की हमें है कि हमें अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनना है। एक स्थूल कर्म इंद्रिय और दूसरी है सूक्ष्म कर्म इंद्रिय। स्थूल कर्म इंद्रियों को तो हम फिर भी कर लेते हैं वश में, हम सोचते हैं चलो आंख से नहीं देखेंगे, हाथ से किसी को थप्पड़ नहीं लगाएंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, मुख से कुछ वचन कुवचन नहीं बोलेंगे, व्यर्थ की बात हम नहीं सुनेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन सूक्ष्म जो इंद्रिय है हमारे अंदर, मन बुद्धि और संस्कार, ये जो मन है वो बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए जब पहला लेसन में सिखाते हैं ना, मन एक चंचल घोड़ा है, मन एक चंचल घोड़ा है। लेकिन अब हम ब्राह्मणों के लिए चंचल नहीं है, है या चंचल? हम ब्राह्मणों के लिए अभी चंचल नहीं रह गया है मन। लेकिन हाँ, मन में संकल्प विकल्प तो फिर भी अभी आते हैं। जो बाबा ने कहा ना, मन का काम ही संकल्प करने का है, और संकल्प बहुत तेजी से चलते हैं हमारे। उस संकल्पों पर जय करना, उस संकल्पों पर विजय पाना, उसकी ही हमें पूरी मेहनत करनी है। आप अपने आप को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मन एक मिनट के अंदर, एक सेकेंड में कहां से कहां दौड़ता है। अभी जैसे आप सब क्लास सुन रहे हो, मुझे देख भी रहे हो, लेकिन अपने आप से पूछो, हर एक मन से पूछे कि हमारा मन कहां जा रहा है। सेकेंड में मन दौड़ लेता है, सेकेंड में जाता है, दौड़ता रहता है। संकल्प की गति इतनी तीव्र है, उस तीव्र गति को रोकना ही योगी का प्रथम पुरुषार्थ है। ये हमारे संकल्प इतने तेजी से न चले, उस मन के ऊपर हम राजा बन जाएं, राजा बन करके उस मन को जीते हम। यूं संकल्प तो आएंगे ही, अभी हम योग करते हैं, योग में भी तो हम संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये भी संकल्प है। लेकिन ये संकल्प से हम और ऊपर उठते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। बाबा ने हमें याद दिलाया कि तुम कौन सी आत्मा हो, साधारण आत्मा नहीं है हम, हम वही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा है हम। क्योंकि आदि में हम सब देवता थे, तो हम देवी घराने की आत्मा है, हमारा ही स्वरूप है। तो बाबा ने हम सबको याद कराया, जैसे कल भी हम लोग कमेंट्री सुन रहे थे शाम को, तो कमेंट्री में क्या सुन रहे थे कि किस रूप में बैठो आप, कि आप देवी देवता के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। तो हमारे संकल्प ही बड़ा काम करते हैं। लेकिन कई बार चलते चलते क्या होता है, हमारे संकल्प दूसरी तरफ फट से चले जाते हैं। किसी के अंदर कुछ अवगुण देखा, किसी की कोई बात सुनी, तो हमारा मन कहाँ चला जाता है, झट से उधर चला जाता है। फिर हम उसको खींच करके लाते हैं, तो मन कहाँ जा रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा की डायरी में मिला था ना, सुना होगा आपने कि ब्रह्मा बाबा की डायरी में, हे मन आत्मा राजा मन मंत्री, तू राजा के बिना मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। या ज्ञान में बाबा लिखते थे डायरी के अंदर, ज्ञान जब नहीं था बाबा को, तब बाबा की जो डायरी मिली उस डायरी में लिखा था, मन मंत्री है आत्मा राजा है, ये मन तो कहां जाता है। तो योगी जीवन के अंदर पहला पुरुषार्थ हमारा मन के ऊपर होना चाहिए, और जब हमारा मन ठीक होगा तो बुद्धि ठिकाने पे चली जाएगी। अगर हमारा मन ठीक नहीं होगा तो बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता है, और ठिकाना तो हम सबको मिला हुआ है, कहां जाना है, कहां जाना है। दो ठिकाने हैं हमारे, एक है मुक्ति और दूसरी है जीवन मुक्ति। ये दो ठिकाने हैं हमारे, ये दो ठिकाने में हमारी बुद्धि चली जानी चाहिए। बस जब भी हम योग में बैठते हैं बाबा की याद में, तो हमारा मन ऐसा मन मनाभव हो जाए जो बुद्धि ठिकाने पर चली जाए, और उसी अनुसार हमारे संस्कार बन जाएंगे। फिर ऐसे ही हमारे संस्कार बन जाएंगे, आप देखेंगे अगर आपको ठिकाना लगाना आ गया है अपने बुद्धि को और मन को ठिकाना दे दिया, बुद्धि को ठिकाना दे दिया, तो यह मंत्री क्या करेगा, आपको ठिकाने पर ले जाएगा। और जब ठिकाने पे पहुंचेंगे तो आपके संस्कार वैसे बनते चले जाएंगे, और संस्कार अच्छे होंगे तो अभी का जीवन भी सुखी मिलेगा हमको, अभी भी हम निरोगी बनेंगे और भविष्य में भी हम निरोगी बन जाएंगे, भविष्य में भी हम सुखी बनेंगे। तो ये जीवन, योगी जीवन जो बाबा ने हमारा बनाया है, ये सबसे श्रेष्ठ जीवन है हमारा। ये साधारण जीवन नहीं है हमारा, बहुत श्रेष्ठ जीवन है। इस श्रेष्ठ जीवन को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये श्रेष्ठ जीवन ऐसा नहीं कि क्या करें, हमको तो बंधन है, नहीं जाते हैं। कई लोग कहते हैं, बहन जी हम चाहते तो हैं लेकिन हमारे अंदर ऐसा बंधन आ जाता है, क्या करें। सबसे बड़ा बंधन कौन सा होता है? सबसे बड़ा बंधन तो हमारे मन का बंधन ही होता है। मन ही बंधन में जकड़ा रहता है, मन ही बंधन में जकड़ा रहता है ना। किसमें बंधन जकड़ा रहता है? विकारों के अंदर, या तो किसी की अच्छाई में प्रभावित होकर के हमारा मन उसमें जकड़ जाता है, और या किसी की बुराई देख के जकड़ जाता है उसके अंदर, तो बंधन आ जाता है ना। आज या कल भी निर्मला दीदी ने कहा था ना, एक लोहे की जंजीर, दूसरी है सोने की जंजीर। कल क्लास हुआ था, नहीं मेडिटेशन में हुआ था ना, कहां पे हुआ था। तो हम फंस जाते हैं बंधन के अंदर। तो हमारी अपनी आपकी जंजीर है, देह की जंजीर। हमारा मन देह में बड़ा फंस जाता है, देह को सजाने में, देह को श्रृंगारने में। तो सबसे बड़ा बंधन हमारा मन का बंधन आ जाता है, और जब तक हम मन के बंधन को नहीं जीत पाएंगे तब तक मन मनाभव नहीं हो सकेंगे हम। बाबा ने मंत्र दिया है ना मन मनाभव का, अभी तो कितना सहज दे दिया ज्ञान, लेकिन जब हम लोग ज्ञान में आए थे इतना सहज नहीं था। न तो याद शब्द था, न योग शब्द था। हमें कहते थे निष्ठा में बैठ जाओ, बस निष्ठा में बैठ जाओ। ना कोई कमेंट्री थी, ना कुछ था, और ये कोई चित्र वगैरह भी तो नहीं थे, केवल त्रिमूर्ति झाड़ गोला का चित्र हुआ करता था, और श्री कृष्ण टेढ़ा वाला, बस। और कोई चित्र नहीं होते थे, बस आए सेंटर पर, कोर्स वगैरह भी नहीं होता था उस समय पे इतना। आए और सेंटर पर बोलते थे निष्ठा में बैठ जाओ, ग्रामोफोन बजता था, ग्रामोफोन की धुन के अंदर गीतों की, क्योंकि पहले के गीत भी ऐसे अच्छे थे जो उस गीतों की धुन सुन करके योग अपने आप ही निष्ठा में बैठ जाते, मन टिक जाता था। अब तो योग लगाना नहीं पड़ेगा, अभी तो लगाने कहते हैं बहन जी योग कैसे लगाएं, कैसे लगाएं, कैसे लगाएं, लगाना नहीं पड़ता है योग। जब अपना स्नेह होता है जिस व्यक्ति से, योग ऑटोमेटिक लग जाता है ना। ऑटोमेटिक स्नेह के द्वारा योग लग जाता है। योग के हैं ये मुख्य फंडामेंटल तीन, रिलेशनशिप, लव, देन रिमेम्बरेंस। पहले संबंध हमारा बन जाता है जब बाबा से, जब संबंध बन जाता है तो प्यार हो जाता है। लौकिक में भी दुनिया में भी जब किसी के संग प्यार होता है ना, तो क्या होता है, प्यार जब होने से अपने आप ही योग लगता है। योग माने ही जोड़ है ना, खिंचाव, योग माने खिंचाव है हमारा। जब प्यार किसी से हो जाता है तो खिंचाव हो जाता है। दुनिया में भी लोग जब किसी से प्यार करते हैं तो डरते हैं क्या? डरते नहीं है, हिम्मत से चलते हैं। और हमने तो प्यार किया है किससे? सर्वशक्तिमान से, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से प्यार किया है, तो हमें डरने की तो बात ही नहीं है। तो हमें अगर बंधन आता है, मन का बंधन, तो देह की तरफ बुद्धि जाती है हमारी, देह के संबंधों में जाती है। परंतु मेरा अपना निजी अनुभव है कि अगर हमारा सच्चा प्यार, सच्ची लगन बाबा के साथ है, सच्ची लगन, तो कहा जाता है कि जहां लगन है वहां रास्ता निकल जाता है। जहां सच्ची लगन है वहां रास्ता निकल जाता है। तो मेरे को तो लौकिक में हमने बहुत बंधन सहन किए, बहुत बंधन आए। ईश्वर का बनने में बंधन नहीं आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत कम है जिसको बंधन नहीं आया होगा। पूरा परिवार अगर ज्ञान में चलता है वो बात अलग है, वो तो आजकल तो पूरा परिवार चलता है, क्योंकि ज्ञान बढ़ा, अच्छी तरह से डेवलप हो गया है। टीवी के माध्यम से मीडिया ने आज इतना प्रचार कर दिया है जो बड़ा सहज हो गया है लोगों के लिए। लेकिन हम लोग के जमाने में तो सहज नहीं था, और लोग तो बड़ी निगाह से देखते थे, ये ब्रह्मा कुमारियां, सारा दुनिया में यही गायन था कि ब्रह्मा कुमारियां आंखों में सुरमा पहना देगी, बस सुरमा पहना देगी। इससे डर के मारे लोग सुन करके क्या करते थे, अच्छी बात समझते भी बंधन डालते थे। तो हम लोगों के सामने तो बहुत बंधन आए, मारे भी खाई, ताले में भी बंद किया, सब कुछ किया, खाना नहीं दिया। परंतु कहते हैं, जाको राखे साइया, मार न सकिए कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी होए, है ना। तो मित्र संबंधी सारे जैसे कि दुश्मन जैसे बने, पर बाबा एक साथी बन के रहा, जिसने अपनी सच्ची डोर बाबा के हाथ में दे दी। सच्ची डोर दे दी बाबा के हाथ में अगर हमने, तो बाबा क्या करेगा, मुक्त करेगा कि नहीं करेगा? मुक्त कर देता है। उसने वायदा किया हुआ है अपने बच्चों से, वायदा किया है अपने बच्चों से कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी याद में रहो तो मैं मुक्त कर दूंगा। तो सचमुच हमने तो अपने जीवन में अनुभव किया, बहुत सारे बंधन आए, बहुत सारे बंधन आए। गीत बना था, चाहे दुनिया बोले कि बोल, मीरा के लिए कहा गया था ना कि चाहे दुनिया बोले कि बोल, गिरधर मेरू है। तो हम तो ये गाते थे, दुनिया बोले कि बोल, कि शिव बाबा मेरू है। बस जब शिव बाबा मेरा बन गया तो कोई क्या बंधन डालेगा, कोई कोई डाल सकता है? किसी की ताकत नहीं है, डालने वाले का भी क्या होगा, अपने आप मुक्त कर देंगे। हमको याद है एक बार हमें ताले में बंद किया गया था, लेकिन मैं भी ताले को खोल करके भी चुपचाप चली गई, लौट के जब आ गई सेंटर से, तो घर वालों को पता ही नहीं चला कि मैं गई भी थी, ताला खोला भी था, पता ही नहीं चला उन लोगों को। अब आप देखिए किसकी कमाल है, ये किसकी कमाल है, एक बाबा की कमाल है। बाबा अपने बच्चों की कैसे रक्षा करता है, रक्षा करता है, क्योंकि रक्षक है वो, उसने हमारा ठेका लिया हुआ है, हमारी जिम्मेवारी ले रखी है बाबा ने कि मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा, मैं तुमको अपना सेव बनाऊंगा और बना के चिंताओं से मुक्त करूंगा। सचमुच सबसे बड़ा जो बंधन आता अपने मन का ही बंधन है। अगर मन का बंधन नहीं हो हमारे जीवन में अंदर, तो आप देखिए बहुत सहज उड़ सकते हैं। योग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम योग लगाएं लगाएं लगाएं, लगाना नहीं होगा, लेकिन योग अपने आप लग जाएगा आपका। बाबा ने कहा ना, राजयोगी भी हो तो आप कर्म योगी भी हो। कर्म योगी हो क्योंकि बुद्धि योग लगाते हो आप, तो हम कर्म करते हुए भी बाबा के साथ जुड़ सकते हैं। कर्म करते भी, हर कर्म में, भोजन खाते हो, भोजन बनाते हो, ऑफिस जाते हो, हर कर्म में मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये सोचना है कि हम तो कठपुतलियां हैं बाबा की। तो हम बता रहे थे कि अपने आप को क्या समझना है कि हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं बाबा के, कराने वाला करा रहा है हमारे ऊपर। तो जब उसके ऊपर सब छोड़ देते हैं तो वो जरूर हमें मदद भी करते हैं। हमारे सामने परीक्षाएं भी आती हैं, परंतु परीक्षा को हम पास कर सकते हैं, बंधनों को हम पार कर सकते हैं। तो आज जो हम सबों ने भट्ठी रखी है यहाँ पर, भट्ठी में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? योग तपस्या करने के लिए बैठे हैं ना? क्यों तपस्या कर रहे हैं? क्यों तपस्या कर रहे हैं? तपस्या का मतलब ये है कि हम इस भट्ठी से ऐसा तप के जाएं जो परिवर्तन हो जाएं, हम परिवर्तन हो जाएं। तो बाबा से हम योग क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे? परिवर्तन होने के लिए। हर एक अपने आप में देखेगा, सोचेगा कि उसके जीवन के अंदर कितनी अंदर बुराइयां थी, कितने बुरे संस्कार थे, कितनी बुरी आदतें थी हमारे अंदर, कितना बुरा स्वभाव था। किंतु भट्ठी में तपते तपते, केवल यहां भट्ठी नहीं लेकिन हमारा तो पूरा जीवन ही भट्ठी है। वो तो थोड़े समय, 3 दिन चलो आप आए भट्ठी में, इकट्ठे संगठन में कर रहे हैं, हम रिफ्रेश हो जाते हैं, इसी बहाने हम सब का आपस में मिलना हो जाता है, लेकिन हमारा तो पूरा जीवन ही भट्ठी के अंदर है। ऐसा सोचने से हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, और उस परिवर्तन से क्या होगा, हम कर्मयोगी भी बनेंगे, और कर्मयोगी बनने से अपने कर्म भोग पर भी विजय पा सकते हैं। योग का बल ऐसा बल है, योग का बल, जो हमारे को अपने देह के जो भी बंधन है उससे भी हमको मुक्त करता है। अब देखिए शरीरों के अंदर कितने रोग होते हैं ना, दुनिया वालों को रोग होने से हाय हाय करते हैं, और हम बाबा के बच्चे योगी आत्मा क्या करते हो, हाय हाय करेंगे क्या? हम हाय हाय नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कर्मों का ये हिसाब किताब है जो हमें योग बल से चुकतू करना है। कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय, जैसा प्रैक्टिकल में हमारी बड़ी दादी ने किया ना, दादी प्रकाश मुनि जी ने कितनी विजय प्राप्ति, कितने भोग भोगा। हमारी आदरणीय दादी जानकी जी को देखो, कितना सब कुछ था, परंतु कभी भी महसूस होने नहीं दिया हम सबको कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये है, दर्द है, नहीं। हमेशा एक्टिव रही जानकी दादी। 104 वर्ष की उम्र में भी आपने देखा कि कैसे अमृत वेले उठ करके योग कराना करना, रोज क्लास में भी आना, मुरली सुनाना। तो क्या है ये, योग से, कर्म योग से क्या किया उन्होंने, कर्म भोग पर विजय प्राप्त की है। क्योंकि अंदर में खुशी है, अंदर में खुशी है कि मैं कौन हूं और मुझे कौन पढ़ा रहा है, किसने हमें योग सिखाया है, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमें बाबा की याद से गुजरना है, बाबा की याद साथ है तो हमारा कर्म भोग पर भी हम आराम से विजय पा सकते हैं। तो ये देह भी हमें नहीं सताएगी, ये देह भी दुख नहीं देगी हमको, क्योंकि जब हम कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तन मन धन सब कुछ आपका है, तो पहला तो क्या आता है इसके अंदर, तन आ जाता है। जब तक तन को बाबा के आगे अर्पण अच्छी तरह से नहीं किया, तब तक एक कर्म भोग जब आता है तो परेशान हो जाएंगे हम, और जब तन अर्पण कर दिया तो हम परेशान नहीं होंगे। मैं तो अपना यह पुरुषार्थ करती हूं, जब भी कुछ शरीर में बीमारी आती है, कुछ आती है तकलीफ, मैं कहती हूं बाबा ये तन हमने आपको दिया है, अगर आपको इस तन से सेवा लेनी है, तन से सेवा लेनी है तो ठीक रखना, और सेवा नहीं लेनी तो बिस्तर पर सुला देना, क्योंकि ये तो तन आपको दे दिया है, मेरा तन तो है ही नहीं, अभी अर्पण कर दिया है ना जब हमने, तो मेरा तो रहा ही नहीं कुछ भी, तो फिर हमको इस देह का बंधन तो नहीं आएगा ना। नहीं तो कभी कभी देह का बंधन, बार बार उस शरीर को हम याद करते रहेंगे, हाय मेरे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो बुद्धि योग उसमें जाता है तो देह अभिमान आ जाता है बार बार, और जहां देह अभिमान आएगा वहां बाबा की याद रहेगी, बाबा की याद नहीं रह सकती है। इसके लिए बाबा हम सबको रोज रोज मुरली के अंदर क्या कहता है, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। आज बाबा 85 वर्ष से एक ही प्रैक्टिस करा रहे हम लोगों को, एक ही प्रैक्टिस, पहले दिन से जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो उस दिन से लेकर आज दिन तक बाबा रोज ये प्रैक्टिस करा रहे, तुम आत्मा है, तुम आत्मा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कैसे प्रैक्टिस की, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को भी बाबा क्या कहता था, जसोदा आत्मा है, पालू आत्मा है, नारायण आत्मा है। बाबा ने इस तरह से प्रैक्टिस किया ना आत्मा आत्मा का, तो हम सबको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिससे देह का भान हमें भूल जाए। तो एक है देह का भान और दूसरा है देह अभिमान, दो चीजें होती हैं। जब भान भूलेगा तो अभिमान नहीं आएगा, और जब तक भान रहता है तो अभिमान आ जाता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। आज भी मुरली में बाबा ने कहा ना, ऐसा वैसा कौन कहता है, कौन कहता है, जिसके अंदर अभिमान होता है, बुराई को देखने की दृष्टि होती है, आंखों की का परिवर्तन नहीं हुआ, वृत्ति परिवर्तन नहीं हुई हमारी, जब तक दृष्टि परिवर्तन नहीं, वृत्ति नहीं हुई परिवर्तन, तो प्रवृत्ति भी परिवर्तन नहीं होगी हमारी। तो आज का समय हमारे लिए क्या सिखा रहा है, जैसे आज हम सभी ने झंडा लगाया स्वतंत्रता दिवस का, ठीक है ना, तो हम अपने आप से पूछें, हम क्या स्वतंत्र हैं अभी तक, हम स्वयं, हम अपने देह से, अपने बुराइयों से, अपने बंधनों से स्वतंत्र हैं? झंडा तो लगाया हम सबने, बाबा ने तो स्वतंत्र रहने की बहुत अच्छी विधियां सिखा दी हम सबको, सीखी है ना हम सबने, अपने को स्वतंत्र रखो एकदम, मैं उड़ता पंछी हूं, मैं आत्मा इस देह से अलग उड़ता पंछी हूं, तो देह का बंधन भी मुझे नहीं सताएगा, क्योंकि मैं तो पंछी हूं। पंछी उड़ता भला कहते ना, योगी रमता योगी चलता भला और पंछी उड़ता भला। पंछी अगर एक जगह बैठ जाए तो क्या कहेंगे उसको, पंछी को उड़ना अच्छा लगता है ना, पंख दिए हैं, उड़ना अच्छा लगता है। योगी को बहता रहना अच्छा लगता है। तो बाबा ने हम सबको बेहद की सेवाएं दे दी है, हद नहीं रखा है, बेहद सारे विश्व की सेवा करने की बाबा ने हम सबको जिम्मेवारी दे दी है, इस सारे विश्व की सेवा के जिम्मेवार आप हो। और विश्व की सेवा के जिम्मेवार तभी हो सकेंगे हम, जब हमने स्वयं की सेवा की है। स्वयं की सेवा की जिम्मेवारी जब तक हमने नहीं उठाई है, तब तक हम विश्व की सेवा कैसे कर सकते हैं, कर सकेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं जब तक स्वयं की जिम्मेवारी नहीं उठाई हमने। तो स्वयं का परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन लाएगा, यही हम सब योगियों के लिए बाबा ने कर्म सिखाया है, हमारा अब कर्तव्य बनता है। हम ऐसे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं जो हम स्वयं का परिवर्तन करके अन्य आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को, अपने परिवार वालों को, उन सब का परिवर्तन करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर है। जब ऐसा समझेंगे अपने आप को तो अपने ऊपर क्या रहता है, अटेंशन रहता है। जिम्मेवार आत्मा को अपने ऊपर अटेंशन जरूर रहता है कि ऐसा कर्म मेरे से न हो जाए, ऐसा कर्म मेरे से न हो जाए जो देखने वाले मुझे कहें वाह तुम तो योगी हो। यही योग है, कहेंगे ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे हमें। इसीलिए हम पहले अपने आप के जिम्मेवार बने कि हमने अगर ठीक पुरुषार्थ किया अपने आप के लिए तो हम योगी बन सकते हैं। तो योगी जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन जो हमें बाबा ने दिया है, हम कितने भाग्यशाली आत्मा है सोचो। अभी आप कितने भाग्यशाली हैं, है या नहीं है? स्वयं भगवान ने इतने सारे विश्व की आत्माओं में से हम सबको चुन के लाया है। तो सदा ये नशा रहना चाहिए कि मैं बाबा का चुना हुआ एक फूल हूं, चुना हुआ फूल हूं, जिस फूल ऐसा फूल हूं जिससे सब खुशबू लेंगे। मैं ऐसा चुना हुआ फूल हूं जो सबको खुशबू दूंगा। मैं कांटे में रह करके भी गुलाब खुशबू दे रहा है ना, तो मुझे भी सारे विश्व के अंदर विकारों की दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में, संसार के विषय विकारों की दुनिया में रहते हुए भी मुझे ऐसा रहना है जैसे गुलाब का फूल खुशबू दे रहा है। तो खुशबू कैसे आएगी? जब अपने अंदर योगी के लक्षण आएंगे हमारे अंदर। जब तक योगी के लक्षण हमारे अंदर नहीं है, केवल हम बैठ के सफेद कपड़े हमने पहन लिए, समझ लीजिए हमने सफेद कपड़े तो पहन लिए, हम बहुत दिखाते हैं हम बड़े योगी हैं, हम बहुत अच्छा सुनाते हैं, परंतु जब तक आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं है तब तक क्या योगी है। ज्ञान सुनाना तो बड़ा सहज होता है। हम आपको बताएं, एक हमारे पास भाई के पास कोई मेहमान आया, मेहमान को शाम को जाना था, ट्रेन पकड़नी थी। वो सवेरे से आके उनके घर में बैठा था, वो भाई अकेला था, तो वो आटा गूंधता रहा। इतना ज्ञान सुनाया उसने, सवेरे से लेकर आटा गूंधते 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 शाम हो गई उसको, और वो बेचारा भूखा ही चला गया। इतना ज्ञान सुनाया। अब वो क्या ज्ञान योगी है बोलिए? तो उसको योगी कहेंगे कि जो व्यक्ति आपके पास भोजन खाने के लिए आया, रहने के लिए, उसको इतना तो सुनाओ, ठीक से सुनाओ। एक दिन में ही अगर आप सारा माल दे देंगे तो हजम कर सकेगा कोई? सोचो, हजम कर सकेगा? वो सारा दिन भर आटा गूंधता ही रहा, गूंधता ही रहा, वो बेचारा भूखा ही चला गया। शाम हो गई, बोला मेरी तो ट्रेन आ गई, मैं जा रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि योग का मतलब कि नहीं कि हम बहुत ज्ञान सुना रहे हैं तो हम बहुत अच्छे योगी बन गए हैं। जो बाबा मुरली में कहता है, अगर आपको ज्ञान सुनाना नहीं आता कोई बात नहीं है, मत सुनाओ, लेकिन बाबा की याद में शांत होके रहो, कम से कम शांत होके तो रहो। इतना भी लंबा ज्ञान नहीं सुना, शॉर्टकट। बाबा क्या कहता है? शॉर्टकट, आत्मा समझ के मुझे याद करो, बस। कितना शॉर्टकट ज्ञान दिया, सारा ज्ञान उसी में आ जाता है। आत्मा समझ के मुझे याद करो तो क्या परिचय मिल गया, अपना भी परिचय मिल जाता है और बाबा का भी याद आ जाते है। कितना सहज बाबा ने कर दिया ना हम सबको। इसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे करूं। योगी के लक्षण ही है कि हमें योग व्यवहार अच्छा करना है, व्यवहार की शुद्धि हमारी होनी चाहिए। जब तक हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं है हम लोगों के साथ, हमारा अंदर सच्चाई नहीं है, हम सत्यता के मार्ग पर चल रहे हैं और हम खुद झूठ बोलते हैं, तो क्या होगा? हमारा बाबा सब कुछ सत्य सुना रहा है, कहता है रोज मुरली में, बच्चे सच तो बीठो नच, सच तो बीठो नच, सच से डरना नहीं है कभी भी। तो हम सच्चा ज्ञान सुनाते हैं लोगों को, हम सच्चाई से चल रहे हैं, तो सच्चाई के मार्ग पर बाधाएं जरूर आएगी। बाधा तो आएगी, परंतु हमें डरना नहीं है, हमें सहन करना है, सहन करना है। अगर कोई कुछ कहता भी है तो सहन कर लेना है। हमको याद है एक बार हम लोग जब शुरू शुरू में हम लोग आसाम में आए ना, आप जानते हैं आसाम जो है इंडिया से बिल्कुल अलग कल्चर था पहले। अभी तो टीवी के माध्यम से वहाँ की कल्चर इंडिया से थोड़ी थोड़ी मिलने लगी है, लेकिन नहीं तो नॉर्थ ईस्ट की जो कल्चर है वो बिल्कुल इंडिया से अलग थी। जो हम रक्षाबंधन मनाते हैं हम लोग प्यार से, दुर्गा पूजा, दिवाली कितना मनाते हैं ना, भाई दूज मनाते हैं, लेकिन वहाँ ये सब कोई सिस्टम नहीं था, कोई ऐसा नहीं फेस्टिवल नहीं है। वहाँ पे सिर्फ तीन ही फेस्टिवल होते हैं, वो उसको कहते हैं रंगोली बिहू, भगोली बिहू और कंगाली बिहू, बस यही तीन फेस्टिवल मनाते हैं वहाँ पर। तो जब हम लोग आसाम में गए पहले पहले तो कोई घर देने को भी तैयार नहीं, पहले तो बहुत मुश्किल से घर मिला, छोटा सा घर कुटिया। तो यही संकल्प आया कि बस, बाबा ने कहा है ना, सुना है तीन पैर पृथ्वी मिलने से सारी दुनिया को हब कर सकते हैं, इसी उससे छोटा सा एक घर लेकर सेवा की। आया रक्षाबंधन तो एक दो जने के पास हम लोग राखी बांधने के लिए जाने गए, तो जानते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग कहते हैं ये तो मारवाड़ियों का धर्म है, भागो 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 यहाँ से, जाओ जाओ, हम लोग राखी वाखी नहीं बांधते हैं। इस प्रकार से धमकी दिया हम लोगों को, गाली देने लगे, हम लोग चुपचाप से चले आए। अब आप देखिए सहन करना पड़ा ना, अगर योगी नहीं होते, बाबा ने वो सहन शक्ति नहीं दी होती, योगी का जो लक्षण है सहन करना, अगर हम सहन नहीं कर सकते थे तो बहुत रोते थे ना, कहाँ हम आके फंस गए हैं, कहाँ दुखी होते थे। लेकिन सोचा चलो, बाबा ने कहा है ना, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय हार जीत आराम बेआराम सब में समान रहना है, ये योगी का लक्षण है। ये मम्मा भी जब सेवा में भेजती थी ना तो पहले बहनों को ये पक्का करा के भेजती थी कि जहां भी जाओगे वहां ये सब बातें होंगी, निंदा भी होगी तो स्तुति भी होगी, आपको आराम भी मिलेगा बेआराम भी मिलेगा, गाली भी देंगे लोग और अच्छा भी बनाएंगे आपको, लेकिन आप डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कितना सहन करना पड़ा, परंतु आज वही स्थान है, आज वही नॉर्थ ईस्ट है, जब राखी पहनने के लिए लोग तैयार रहते हैं, इंतजार करते हैं कि आज बहन आएंगी और हमें राखी पहनाएंगी। अब देखिए समय की बलिहारी है, धीरज रखना पड़ता है, अगर पहले ही हम घबरा जाएं, बाबा याद ना आए, सहन शक्ति की धारणा ना हो तो क्या होता था, हम गए आसाम में वही आता ऐसा होता है, हम तो नहीं रह सकते यहाँ पर, कैसे होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, कितना सहन किया, हमारी दादियों ने कितना सहन किया। हम लोग यज्ञ की स्थापना की बातें सुनते हैं कि कितनी पिकेटिंग हुई इनके सामने में, मारने को भी आए, सब कुछ किया, परंतु कितना सहन किया उन लोगों ने, किसमें क्यों सहन किया, कैसे सहन किया, एक बाबा के प्यार में सहन किया, बाबा के प्यार में सहन किया ना उन लोगों ने, छोटे छोटे थे लेकिन बाबा से इतना प्यार मिला जो अपने लौकिक माता पिता सबका परिवार वालों को भूल गए, एक कम बात नहीं है। छोटे छोटे थे, 10 बरस 12 बरस 15 बरस, कितना माँ बाप से प्यार होता है, घर में कितना सुख मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन उन सब का त्याग करके उन दादियों ने क्या किया, एक बाबा के प्यार में, क्योंकि उनको ईश्वर का प्यार, सच्चा प्यार मिल रहा था, सच्चे प्यार में वो खो गई थी। तो किस तरह बाबा ने ये सिखाया, लक्षण भरे उनके अंदर, गुण भरे बाबा ने, हाँ, बाबा सर्वशक्तिवान है, उस सर्वशक्तिवान ने ऐसा गुण भरा उनके अंदर, ऐसी शक्ति दी, अगर वो शक्ति नहीं मिलती थी उनके अंदर तो कर सकते थे वो लोग, छोटे छोटे बच्चे थे, घर वाले आ गए चले जाते थे, खींच के ले जाते थे, जा सकते थे ना, परंतु नहीं, बाबा का प्यार ऐसा, योग माना ही क्या है, एक बाबा से दिल का प्यार, दिल का प्यार, जब तक दिल का प्यार, हमारा सच्चा दिल का प्यार नहीं होगा ना, तब तक योग लगेगा नहीं, योगी बन नहीं सकते हम। योगी जीवन के अंदर सच्चा प्यार चाहिए बाबा से। तो जिस तरह उन्होंने सहन किया, तो योगी का लक्षण ही पहले है सहन करना और अपने व्यवहार को बदली करना। बस जब तक आपका व्यवहार नहीं होगा तब तक आप सहन नहीं कर सकते हैं। अब व्यवहार के अंदर आता है पहले अपना मीठी दृष्टि, मीठे बोल, है ना, मीठे बोल। अज्ञान काल में भी कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो सबका आपा ले, वाणी ऐसी बोलिए जो सबका आपा ले, सबके दिल की बात खींच ले। तो अपनी वाणी को बदलना है हमें। अगर किसी के प्रति भी अगर हमने कटु वचन थोड़ा भी बोल दिया, उसको कितना दुख पहुंचेगा। जैसे मुझे दुख पहुंचता है ना, सोचो, अपने दिल पर हाथ रखो कि अगर मेरे को कोई ऐसा बोले तो कैसा लगेगा मुझे। तो अगर मैं किसी को ऐसा बोलूंगी तो उसको कैसा फील होगा। तो बाबा ने हमें योगी जीवन के अंदर क्या सिखाया, व्यवहार। व्यवहार के अंदर मीठी वाणी और दृष्टि का परिवर्तन। जब मेरी दृष्टि परिवर्तन होगी तो वाणी भी परिवर्तन होगी और संकल्प अच्छे आ जाएंगे हमारे अंदर। और संकल्प अच्छे होंगे तो ये कान व्यर्थ बात नहीं सुनेंगे। नहीं तो इन कानों को क्या आदत है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। कान सुनने की बड़ी अच्छी आदत है इस कान को, व्यर्थ बातें सुनने की ज्यादा हैबिट, अच्छा लगता है। परंतु हमको क्या करना है, एक्साइट हो जाना चाहिए। किसी की भी व्यर्थ बातें सुनने की हॉबी नहीं होनी चाहिए। बहुतों को ये हॉबी होती है सबकी अच्छी बातों को सुनने, उसमें अपना समय बिता लेते हैं। परंतु हमको ऐसी हॉबी नहीं बनानी है जो सबकी व्यर्थ बातें सुने। हमारा योगी जीवन है, हमारा जीवन है। हम सिर्फ योगी नहीं है, हमारा योगी जीवन है। जीवन के अंदर व्यवहार, जिसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। तो हमारा व्यवहार की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है और उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। गुण सहन शक्ति आ जाती है, फिर समाने की शक्ति आ जाती है, फिर सामना करने की भी शक्ति आ जाती है। कोई गाली भी देगा तो भी आप सामना कर सकते हो, सहन कर सकते हो, कोई बात नहीं है। परिस्थिति आएगी, उसको सामना कर सकते हो आप। अब परिस्थितियां तो आएंगी, कहते हैं परिस्थितियां परम पुरुष का आवाहन करती हैं। परिस्थितियां परम पुरुष का आवाहन करती हैं। जो महान बनने वाले होते हैं उनके आगे परिस्थितियां जरूर आती ही आती हैं। हमारे देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, जितने बड़े धर्मात्मा हुए हैं, बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हैं, तो उनके सामने परिस्थिति नहीं आई है, आई है ना। क्राइस्ट को क्रॉस पर लटका दिया, लेकिन आज उसके नाम में धर्म चल रहा है। आप देखिए परिस्थिति आई ना। अब ब्रह्मा बाबा के सामने भी कितनी परिस्थिति आई, आई ना परिस्थिति। दादियों के सामने कितनी परिस्थिति आई। आज भी यज्ञ में तो बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन कैसे पार हो रही है, क्योंकि किसी मनुष्य का काम नहीं है ये। इंसान का काम होता तो ये विश्वविद्यालय डोलायमान हो जाता था। परंतु ये विश्वविद्यालय किस पर टिका हुआ है, एक परम शक्ति शिव बाबा की शक्ति पर टिका हुआ है। और शिव बाबा ने पहला बल कौन सा भरा योगी जीवन बनने के लिए, पवित्रता का बल। उस पवित्रता के बल से आज सब टिके हुए हैं। पवित्रता के बल से हमारा यज्ञ आज तक थमा हुआ है। कुछ भी आता है, परीक्षाएं आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन उसको पार करते 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 बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा यज्ञ बढ़ रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं ना हम सब। सेंटर्स में भी कितनी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं, परंतु उनको हम पार कर लेते हैं। कैसे, बाबा की याद से। बाबा मेरे साथ है, जीवन का साथी बाबा है। बस बाबा को जिसने अपना साथी बना लिया है, उसकी छत्र छाया में वो चल रहा है, उसकी छत्र छाया है, उसका हमारे कंधों पर हाथ है, सिर पर हाथ है तो जिस पर जिसका सिर ईश्वर का सिर पर हाथ है, सर्वशक्तिमान का हाथ है हमारे सिर पर, तो कोई कुछ कर सकता है? दूसरा कोई हाथ रख नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं जो कर सकता है। चले जाएंगे सामने से, आएंगे, परीक्षा आएगी, पार हो जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते बस एक बल, एक का सहारा और एक में भरोसा। जिसने ऐसा पक्का किया है, एक को दिल में बसा लिया है, एक एक एक, तो वो सदा अपने को जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। इसलिए हम सबको एक को ही पकड़ना है, दो को नहीं। अगर दो नाव में पांव रखेंगे तो क्या होगा? चिर जाएंगे ना भाई, चिर जाएंगे कि नहीं? तो खाली कहना नहीं है तोते के माफिक, लेकिन हमें प्रैक्टिकल करना है। अभी समय आ गया है हम सब के लिए। बाबा क्यों मेहनत कर रहे हैं हम सब के ऊपर? दादियां क्यों मेहनत कर रही हैं? क्या दरकार है, क्या दरकार है? आप भट्टी रखी है सबके लिए, क्यों रखी है? क्या दरकार है आप सबको बुलाने की, इतनी मेहनत करने के लिए? आपको समय पर भोजन मिले, समय पर सब सुविधा मिले, रहने का प्रबंध किया जाए, क्या दरकार है? लेकिन अपना समझा है ना कि बाबा के सब बच्चे हमारे ही भाई बहने हैं। जो हमारी उन्नति हुई है तो सबकी उन्नति होवे, ये भावना है ना अंदर में। इस भावना से ही तो सबको बुलाया है कि जो हमारे अंदर बाबा ने परिवर्तन लाया है, हमें अपना बनाया है, तो हमें भी क्या करना है? अपने ही भाई बहनों को ऐसा बनाना है, उनके अंदर भी परिवर्तन लाना। इसलिए समय समय पर भट्टियां रखी जाती है, भाई बहनों की भी रखी जाती है तो टीचर्स की भी रखी जाती है। देखो शांति वन के अंदर टीचर्स को बुलाया दादी ने, बुलाया है ना? किस लिए बुलाया है? कि सबको संपन्न बनाना है। योगी माना ही हमको संपन्न बनना है, फरिश्ता बनकर के हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। जो देवताओं की महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो हमें अब ऐसा बनना ही है। ये पक्का हमें अपने आप से वायदा करना है बस, और एक दिन के वायदा से नहीं होता है। हम तो प्रतिदिन वायदा बाबा से करते हैं, प्रतिदिन कि अंत तक बाबा आपसे जो मैंने वायदा किया है अंत तक ये वायदा निभाना है। रोज वायदा करना चाहिए बाबा से, रोज वायदा करो। नहीं तो आज किया वायदा, चार दिन के बाद फिर भूल जाते हैं हम, फिर भूल जाते हैं। तो रोज रोज अपने समृत बेले जब बाबा की याद में बैठते हैं तो रोज वायदा करना है। तो रोज जब वायदा करेंगे तो हमारे अंदर में वो पक्का होता जाएगा, अंदर जमता जाएगा ना। रोज 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 करेंगे तो क्या होगा? पक्का होगा। और पक्का होगा तो हम हिलेंगे नहीं। और जो लक्ष्य लेकर के हम आए हैं बाबा के घर में, तो पक्का अपना योगी जीवन बना सकते हैं। भोगी से अभी योगी बने हैं ना, और योगी से बनना है हमें राजयोगी। भोगी से बने योगी, योगी से बनेंगे राजयोगी। तो बस अपना जीवन हमें इतना सर्वश्रेष्ठ बनाना है, इतना श्रेष्ठ बनाना है जो डरना नहीं है हमें किसी से भी। दुनिया वाले बहुत कुछ कहेंगे। बाबा ने एक गीत बनाया था, बंदे कहते मुझको पागल, बंदे कहते मुझको पागल, हम कहते हैं बंदे पागल। बंदे कहते मुझको पागल, हम कहते हैं बंदे पागल, अब बताओ तुम्हें कौन है पागल, कौन है पागल? आप पागल है ना, वो पागल है, वो पागल है, आप नहीं हो? सोचो आप हो कि नहीं हो? बाबा ने कहा देखो वो भी एक प्रकार से पागल हैं, और हम सब भी बाबा को पाकर उसकी याद में गल रहे हैं, तो हम भी एक प्रकार से पागल हैं, है ना? लेकिन उनका पागलपना अलग है और हमारा अलग है। तो बाबा के छोटे 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 चुटकुले थे ना, बहुत अच्छे अच्छे, ऐसे कह के बाबा ने बच्चों को पक्का कराया था, पक्का कराया था। हम लोगों को भी ऐसे पक्का कराया गया था शुरू शुरू के अंदर में, जब हम लोग आए तो छोटे थे ना, ऐसी ऐसी बातें सुना सुना के हम लोगों को इतना पक्का कराया गया और इतना स्नेह दिया गया, इतना स्नेह दिया गया जो बाबा ने अपना बना लिया। नहीं तो हम तो कभी बनने वाले नहीं थे, कभी बनने वाले नहीं थे। परंतु बाबा को बनाना है तो कैसे भी कान पकड़ के नाक पकड़ के बनाता है ना, नाक कान पकड़ के भी अपना बनाता ही है बाबा। तो इस तरह बाबा अपने बच्चों को ऊंचा भी बना रहा है, श्रेष्ठ भी बना रहा है। तो हम सब कितने पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं भगवान ने हमें पसंद कर लिया है। स्वयं विश्व के रचयिता सर्वशक्तिवान ने हमें पसंद किया है, उसकी पसंदगी तो गलत नहीं हो सकती है ना। वो गीत है ना, क्या देखा तूने मुझ में, क्या देखा तूने मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मुझे पसंद कर लिया। तो जरूर हम सब में कोई ना कोई विशेषताएं हैं, हम सब एक विशेष आत्मा यहां बैठे हुए हैं, इसलिए तो भगवान ने पसंद किया है ना हम सबको, नहीं तो कैसे पसंद करते थे। उसकी पसंदगी तो गलत हो नहीं सकती है ना कभी भी, उसने पसंद किया है, उसकी पसंदगी पर हमको चलना है बस। उसने हमें पसंद किया, हमने उसे पसंद किया, अब जब दोनों की पसंदगी एक होगी तो जीवन को चलाना कितना सहज होगा या नहीं होगा, सहज हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबको अपना योगी जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन जो है उसको बना के रहना है। ठीक है, ओम शांति। चलो बाबा की याद में।